इस बात का, आम दुनिया तो ठीक सही मानों में इस चीज को नहीं समझ सकेंगे। महात्माओं ने इसके बतलाने के लिए मिसालें दी। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, जैसे एक शराबी हो प्याले में शराब छलकती देखे, उसकी आत्मा कई बार ऊंची नीची होती है छलकती शराब को देखकर, ऐसे मुर्शिद को देखकर, ऐसे पुरुषों को देखकर जिसकी अंतर की आंख खुल रही है, वो उसको देखकर उसकी आत्मा ऊंची नीची होती है। हजरत बाबू साहब फरमाते हैं, कहते हैं मेरे जिस्म की ये जो लुए है ये सारी आंखें बन जाए, इतनी आंखों के साथ अगर मैं अपने मुर्शिद को देखता हूँ फिर भी मुर्शिद देख न जाऊ, फिर भी मुझे रंग दिया नया से नया रंग आता। आप बुते यार वो जो बुत है ना, नया से नया रंग देखते चले जाओ, रंग बदलता चले जाता, नया से नया रंग देता। अगर मैं वो शीशा नहीं, माफ करना, उसमें जो इजहार हो रही ताकत है ना उसके मुख्तलिफ रंग। सच्चे मानो में वही गुरु है जिस्म के पोल पर इजहार करता। ये गुरु भक्त है, इनकी आंख खुली है, देख रहे हैं उस नशे को बयान कर रहे हैं। जो शरीर से डरने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, बंदगान खुदा खुदा न बाशन, लेकिन से खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होते। इधर से कान न पकड़ा, इधर से पकड़ लिया। जिनकी आंख खुलती है वो लाद है फकीर होकर क्या कहता है, मन खुदा रा आशकारा दीदो दसूत इंसान खुदा रा दीदो, कि मैंने उसको लाला जहूर इंसान की शक्ल में चलते फिरते देखो। यही गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, हरि जियो नाम पढ़े रामदास। रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास है, वो हरि उसमें बोल रहा। बात भी ठीक है, जैसे मैं आगे खसम की बाणी तैसे तैसा करी ज्ञान में लालो, जो ऐसा जिसके अंदर एहसास नहीं जागा वो महात्मा भी कहा। महात्मा उसी का नाम है जो कॉन्शियस को वर्कर बन गया डिवाइन प्लान का, वो देखते वो पावर काम कर रही है, मेरा किया कुछ न हो जो हर भावे से हो, ये कभी सब कर। नानक दास बुलाया, बोले बुले शाथे गए शाह नायक के पास, कहते बाग था आमों का, दृष्टि साधन उन्होंने की थी, आम तोड़ा जेब में डाल दिया। शाहनायक ऊपर से आ गए, कह रहे अरे भाई तुम मेरे चोर हो, हमारे चोर हो। कह रहे महाराज मैंने तोड़ा नहीं। कह रहे मैं भी देखता हूँ कि तुमने तोड़ा नहीं, जैसे तुमने तोड़ा वैसे भी मैं जानता हूँ। यानी पहले दिन वो शाहनायक को धोखा देने जाता, जब आंख खुली तो कहने लगे मौला आदमी बड़ा है। कह रहे ये तो इंसान नहीं था, खुदा ही चल कर आ गया था। तो ये उन लोगों की हालात है, बयानात है, जिनकी अंतर की आंख खुली है और उस लेवल से देख रहे हैं। हम मनबुद्धि के घाट से देख रहे हैं। तू सुल्तान कहां मियां, तेरी कौन बढ़ाई है, तू बादशाह है, हम तुमको मियां मियां करके कहते हैं। अरे बताओ ये तो उसकी तारीफ है कुछ था बिलीटो करना, बताओ हमने जो बयान करना है अपने लेवल से करना है ना, और क्या कर सकते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर था, किसी गांव में चला गया पड़ताल के लिए, पटवारी की पड़ताल हो गई, साहब बहादुर चलने लगे। जो वहां के जाट थे उन्होंने क्या किया, साहब बहादुर हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा तुमको पटवारी बनाए। उनके लिए पटवारी बड़ी चीज है, ये नहीं पता कि कई पटवारी उसके दर पर दौड़ रहे थे। तो जिनकी आंख खुली उनसे यह है, जिनकी नहीं खुली वो क्या कहते हैं, ऐसे पुरुषों को माफ करना कुराइया कहते हैं। गुरु नानक साहब जैसे हस्ती दुनिया में आए, हमारे जैसे माफ करना पढ़े लिखे आलमों फाजलों और पंडितों ने उनको कहा ये लोगों की अकलें बिगाड़ते, सो शहर में नहीं दाखिल होने देना चाहिए। तो अपना लेवल है और क्या होता है। हजरत रहीम साहब फरमाते हैं एक जगह कि मैं एक बार एक बेड़ी पर जा रहा था दरिया दजला में, उसमें एक दनहाट पुरुष था, सैर व तफरी के लिए जा रहा था। नकाल भी कोई थे, वो नकलें करते थे दिल की खुश करने के लिए, ये चुपचाप बैठे थे। ये कायदे की बात है, जब सावरे हंस रहे हो एक आदमी चुपचाप बैठा हो तो निकालो ने इनकी नकल उतारनी शुरू कर दी। बोले थे कि मुझे बिशारत हुई, खुदा ने ये कहा कि देख इब्राहिम, मुझे तेरी ये जिल्लत मंजूर नहीं। अगर तू कहे मैं इस बेड़ी को उल्ट दू ये सब डूब गया। तो कहने लगे मैंने खुदा को अर्ज की है, खुदा इन बेचारों का क्या कसूर है, इनकी आंख पर जो जहल विद्या का पर्दा आया हुआ है तो इतने ही दयाल हुआ है तो इनके पर्दे को हटा दे। कहते जब उनका पर्दा हटा तो सब आके माफी मांगने लगे, भाई माफ करो हम भूल में थे। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इन महापुरुषों को वही सही रंग में देखते हैं जिनकी अंतर की आंख खुलती है। हमारे हजूर का वाक्य है, एक बार लोगों की चम महाराज हम आपको क्या समझे, फरमाने लगे भाई तुम मुझको भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, मुझको पिता के समान समझ लो, टीचर के समान समझ लो, मेरे कहने के मुताबिक तुम अंतर चलो, पिंड से ऊपर आओ, अंतर उन मंडलों पर गुरु की शान को जब देख लोगे फिर जो चाहे कह लेना। वो लोग हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में आ जाते, उनको उभारने के लिए हम जिनसियत कुदरती खासा उनको कहते देख भाई ये भी तेरा मुकाम है, तेरा एक और भी मुकाम है, तू कहाँ बैठा, तेरा ये असली वतन नहीं, तेरा असली वतन कोई और। तो उनको समझा बुझा कर जब अंतर्मुख करता फिर वही कहते ये खुदा। तो इस हैसियत में भाई नंदलाल साहब फरमा रहे जी आगे,
गाए सूफी गाए राद गाए कलंदर में शिवद रंग आए मुख्तलिफ दारद बुते आयारे मां।
फरमाते हैं गाह सूफी गाह जाहिर गाह कलंदर बेशक, कभी तो बड़ा सूफी नजर आता है, गाय बड़ा परहेजगार मालूम होता है, कभी बड़ा त्यागी मालूम होता है, कभी कभी बड़ा मस्त मालूम होता है, कलंदराना बातें करता है, उसके कई रंग है, कई रंगों में जैसे जैसे उसके साथ रहने वाले हैं, कभी उसको किसी रंग में देखते हैं, कभी किसी रंग में देखते हैं, कभी किसी रंग में देखते हैं, ये उसके इजहार के मुख्तलिफ पहलू हैं। कहते हैं उस बुते अयार के रंग हाय मुख्तलिफ दार बुते अयार माँ, अयार बुत उसको कहते हैं जो किसी के कब्जे में ना हो, समझे। कहते हैं वो बुत ऐसा है कि कई अनेकों रंगों में नजर आता, देखते चले जाओ अब और फिर और फिर और फिर और, जो खाली देखने में लग रहते हैं उसमें कई शक्लें बदलती हैं उसकी, उसके इजहार के पहलू बदलते हैं। बस जो बाहर छानबीन में रह गया वो रह गया। एक तालिब थे, मैं आपको अर्ज करूं, एक मुसलमान फकीर के पास 40 वर्ष रहा उसके पास। तो एक दिन उनको कहा गया कि जाओ उन से किताब फलानी जगह से उठा लाओ। कहने वाला मैंने कभी कोई किताब नहीं देखी, 40 वर्ष पास रहता है कमरे में आता जाता है पर देखी नहीं किताब कहां पड़ी होती, यानी इतनी महवियत हो उसी से तल्लुक, उसी से लेना उसी से देना, संतन संग हमरा लेवा देवी संतन संग व्यवहारा, डायरेक्ट उसी से कंसर्न हो, किसी और चीज से ना, बाहर किसी सूत्र उसमें जो इजहार करने वाली ताकत उसमें महवियत। ऐसे पुरुष छलांगे मारते ही रूहानियत के रस्ते में तरक्की कर जाते हैं, जो बाहर चुनी और चुनाव में रह जाते हैं वो रह जाते
आशिक नदान दहे चिकस कीमत याकूत दान दे चश्मे गौहर बार मां।
कहते उस बेश कीमत हस्ती की कीमत कौन जान सकता, कि कदरे लाले ऊ बुजुर्ग आशिक न दान से, जो उसके चाहने वाला भक्त है वही उसकी कीमत डाल सकता। फिर क्या कहते हैं, कीमते याकूत दान चश्मे गौहर बारे में। एक कहता है भाई एक और बात है, मेरी आंखों से जो बसते हुए मोती है ना आंसुओं की, जा उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो क्या चीज। पहले कह दिया कोई आशिक कोई भक्तजन मुर्शिद के को असल रंग में देखता, ये कह दिया। कहते या मेरी आंख देख रही है जिससे आंसू टपा टप गिर रहे मोती की, मैं उससे देख रहा हूँ वो क्या क्या नजर आ रहा। वो खुश फिलसूफों से नहीं देखा जाएगा, बात ये वो प्रेम की नजर से देखो। लैला काली सिया थी, माफ करना मिसाल बड़ी बदली है मगर हमारी गल से गल है इसको। तो मजनू उसे चाहता था, तो किसी शायर ने कहा कि लैला राब बच्चे मजनू बायतीत। लैला को अगर देखना हो उसकी खूबसूरती तो मजनू को आंखों में बैठकर देखो। अरे भाई इन महापुरुषों की बढ़ाई को देखना हो, उनकी शान को देखना हो तो किसी भक्तजन की आंखों में दाखिल होकर देखो, वो क्या वो किसी और रंग में नजर आएगा। एक बार अकबर क्या है सत्संग में बैठे हुए थे हजूर भी, बहुत लोग अमीर ज्यादातर आगे जा बैठते थे, मैं भी गरीबों की कतार में बैठा हुआ करता। एक बार कोई साहब थे अमीर, वो आगे बैठे हुए किसी सबब से मेरे पास आप बैठे, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर आप बैठे पीछे। मैंने कहा भाई आपकी जगह तो आगे है, पीछे क्यों आते? क्या नहीं, यहां से हजूर की कोई और ही शक्ल नजर आती। तो मैं याद करने का मतलब है कि अगर किसी को देखना तो वैसे लेवल से देखो तब नजर आए ना। जिसको आंखें ने प्रभु ने नहीं दी माफ करना, फिर वो क्या देखेगा। मई दिन चिश्ती साहब ने फरमाया कि अगर उसको देखना है तो अकल की आंखों से नहीं देखो, उसको प्रेम की आंखों से देखो, फिर वो नजर आएगा वो क्या। प्रेम रूह का जज्बा है माफ करना, अकल बुद्धि का जज्बा। बुद्धि के जज्बे में जो बुद्धि से ऊपर वो कैसे उसका इजहार नजर आएगा, वो तो तनकीरें करता रहेगा। नहीं
हर नफस गोया बया दे नरगते मखमूरे बादहाए शौक में नौशद दिले हुशियार माँ।
फरमाते हैं हर नफस गोया बया दे नरगते मखमूरे, उसकी नजर जो नशे से भरी हुई है। कहते हैं गोया इनका तखल्लुस है कि मेरा दिल हर वक्त उसी नशे को याद कर रहा, एक बार देखा सारी उम्र के लिए गया। भाई दुनिया में मिसाल है कि आंख का मारा कहीं का नहीं रहता, ये दुनियावी आंख का सवाल है। और जिस आंख में प्रभु का इजहार हो के उसकी नजर पड़ी, जिस पर पड़े वो कहां का रह जाता, आप बताए। तो कहते हैं मेरी जो दिल है हर नफस दम दम के साथ हर घड़ी हर मिनट हर सेकंड उसी की याद, वो नशे भरी नजर जो थी ना उसी को याद कर रहे हैं। और क्या है बाद आए शौक मैं नौशद दिले हुशियार माँ, और उसका जो प्रेम शौक का भरा नशे के प्याले हैं उस नरगस जैसी। नरगस आंख की मिसाल देते खुली होती है ना, कैसे उस आंख से जो शराब चोरा शराब की त्रशो हो रही है कहो, कहते हो उसको प्याले पी पी कर बी कर मस्त हो रही। आप बताओ इसको किन लफ्जों में इजहार करोगे। जिससे नशा वो आंख बनेगी रिसेप्टिव बने उस नशे को पी पी कर मस्त हो। ये था एक गुरु की तारीफ तो फिर भी नहीं हो सकती, मैं जो कुछ थोड़ा बहुत आपने तजुर्बे किसी महापुरुष को आया उसका इजहार किया है भाई नंदलाल साहब ने। ये शब्द आपके सामने रखा गया, इस वक्त छोटा सा एक और शब्द आपके सामने रखा जाएगा, या उससे पहले मैं आपको بات یہ جو اس نشے کے عاشق ہے نا وہ کہیں بھی ہو, ایسٹ میں ہو ویسٹ میں ہو, ایک ملک میں ہو دوسرے ملک میں ہو, وہ سچے بھاو میں بھراتی بھاو رکھتے. ان کے اندر دلی کشش ہوتی ہے. چار شرابی اگر مل بیٹھے وہاں قوم و مرد و سماجوں کا سوال نہیں رہتا, آپس میں گلے مل کر بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ایسے جبھی کبھی دنیا تھی ہی نہیں, گرو ارجن صاحب تھے, حضرت میاں میر صاحب تھے, چھجو بھکت تھے, بڑا پیار تھا, کیوں نہ ہوگا.
सावन हरि मन तड़पत हरि दर्शन आए, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मेरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वारे का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वारे का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, तुमरे द्वारे का मैं नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बार, मन तड़पत हरि दर्शन को आए, बिना गुरु राह कहाँ से जो दान हरि गुण गाऊं, बिन गुरु ज्ञान का से पाऊं, दी जो दान हरि गुण गाऊं, सब संतन पे राज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, प्यारे सावन मेरी आस ना तोड़ो, प्यारे सावन मेरी आस ना तोड़ो, दुख भंजन मेरा साथ ना छोड़ो, प्यारे सावन मेरी आस ना तोड़ो, ओ दुख भंजन मेरा साथ ना छोड़ो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जल बिना कमल चंद्र बिना रजनी, ऐसे तड़पूं गुरु बिना सजनी, जल बिना कमल, चंद्र बिना रजनी, ऐसे गुरु बिन तड़पू सजनी। आकुल व्याकुल थिरु नैन दिन, बिरहा कले जो खाए, मन तड़पत हरे शन को आ। दिवस ना भूख नींद नहीं नैना, आ आ दिवस ना भूख नींद नहीं नैना, मुख सो कथत ना आवे बैना, कहा कहूं कुछ कहत ना आवे, मिल कर मेरी तपन बुझा, मन तड़पत हरि दर्शन गुफा। क्यों तरसा वो अंतर्यामी, क्यों तरसा वो अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। क्यों तरसा वो अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पार, मन तड़पत हरि कुमार।
इस वक्त श्री गुरु अर्जुन साहिब जी का एक शब्द आपके सामने रखा जाएगा, गौर से सुनिए कि वो क्या फरमाते हैं और उसका हमारा अमली तौर पर हमारे जीवन पर क्या असर, हम क्या कर रहे हैं। गौर से सुनने की काबिल।
राग बढ़ान मोहल्ला पांचवा। मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे, हम क्यों पाई गुर पूरे।
श्री गोविंद साहब फरमा रहे हैं कि मेरे अंतर के अंतर में उस मालिक के मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश बस रही, अब उसको पाने के लिए क्या जरिया है। पहले सवाल तो यह है कि हमारे घट में क्या उस मालिक के मिलने की जबरदस्त इच्छा है कि नहीं। हमारी जबान तो एक बात कहती है कि हाँ हमें चाहिए, दिमाग भी ये कहता है कि हाँ बात अच्छी है अगर मिल जाए तो, मैं दिल दुनिया मांग रहा हूं। अपने दिल में कंघी मार कर देखो हमारा दिल क्या मांगता है। लोगों को देखा दाखी चित में आ जाता है भाई हमें भी परमात्मा का मिलाप हो जाए, मैं दिल नहीं मांग रहा। सवाल यह, जब दिल कोई चीज मांगता है तो बेख्तियार अंतर से प्रार्थना बेंती कहो अरदास कहो फूट फूट कर निकलती है। जिस चीज को दिल मांगे नहीं, बेख्तियार उसी की आहें दिल से निकलती हैं और पुकारें निकलती हैं कि हे प्रभु हे मालिक मुझे ये चीज मिला दे। देखो दुनिया में हमारा तजुर्बा इस बात का कि दुनिया की जब चीज कोई मांगती है तो कितनी पुकारे करते हैं, रात सोते भी पुकार करते हैं, जागते भी करते हैं, हर वक्त करते रहते हैं। तो जो चीज दिल मांगे, हमारा अंतरला मांगे, ये कह दो उसी चीज के पाने के बेअख्तियार अंतर से प्रार्थना होगी, अरदास निकलेगी, बेनती होगी दम दम के साथ। तो हमारे लोगों की आम हालत क्या, अगर दिल मांगे तो प्रार्थना भी कबूल हो, हमारी जबान मांगती है, दिमाग मांगता है, मगर दिल नहीं मांग रहा। सवाल, हम सिंसियर नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम सिंसियर हो जाएं, हमारी जबान, हमारा दिमाग, हमारा दिल ये मुतफिक हो जाए तो काम बन जाए। जिन्हें हम सुपरफिशियल, अगर कुछ प्रार्थना करते भी हैं, अगर कोई प्रार्थना हम करते भी हैं तो किस लिए करते हैं, कि दुनिया की चीज हमको मिल जाए, उसके लिए तो बड़े दिल से करते हैं। प्रभु को बीच में एक मददगार चीज मान ले, अगर वो मदद करता रहे तब तो ठीक प्रभु, नहीं तो प्रभु का मजनू था, वो लैला से बड़ा प्यार करता था, उसका दीन ईमान लैला बना पड़ा था। एक बार लोगों ने उसको कहा कि भाई मजनू, खुदा तुमको मिलना चाहता, तो कहने लगे अच्छा वो मिलना चाहता तो उसको कहो लैला की शक्ल बनकर, उसे खुदा भी नहीं मंजूर जब तक लैला की शक्ल ना बना कर। माफ करना, हमको भी परमात्मा कबूल नहीं जब तक वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा न करे। तो दुनिया के लिए उसको याद कर रहे हैं ना, अगर मजनू मरेगा तो उसको मरकर को खुदा मिलना है या लैला, आप बताएं, लैला ही मिलेगी ना। तो दिल का सवाल है, दिल क्या मांगता, अगर सच्चे दिल से पुकार निकले तो मालिक सामान करता। गुरबानी में जिक्र आया है, बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, सत संतोख करे अरदास, ता सुन सद भाले पास। अगर सत्य हो जबान, दिमाग और दिल मुतफिक हो, जब तीनों में एक बात हो तो वही चीज सत्य होगी ना, बाकी सब झूठ, धोखा और फ्रेम। कि अगर सच्चे दिल से, सत्य भाव से, जिसमें तुम्हारा दिल दिमाग और जबान मुतफिक हो, पहली शक्ति है। दूसरे संतोष, जो मिला है शुक्र है भाई, शुक्राना भी साथ साथ हो, और फिर दिल दिमाग और जबान मुतफिक हो। कहते ऐसे पुरुष की प्रार्थना सुनकर प्रभु क्या करता है, ना सुन सद बहाले पास, ऐसी पुकार को सुनकर उस बच्चे को पकड़कर कोल बिठा लेता है पास, कहते कहो बच्चा क्या मांगता। तो अंतरलोचा का सवाल है, क्या हमारा हृदय प्रभु को मांग रहा है, सवाल है, उस मालिक को मिलना चाहता है, क्या उसके लिए ये इसी तरह तड़प रहा है जैसे वो रोटी के लिए तड़प रहा है, बाल बच्चा बीमार हो जाए उसके लिए तड़पते, कोई नुकसान हो जाए उसके लिए बेबल होते। अगर ये नहीं तो प्रभु कहा। नामदेव जी थे, उनका बयान किया जाता है कि उनके घर का जो मकान का चबूतरा था वो गिर गया, छज्जा की सुख था। घर वालों ने कहा जाओ भाई बढ़ई को बुला लो, बेदी कहते हैं बढ़ई को, तरखान को बुला लो। गए, जो प्रभु के याद के भक्त है ना, आशिक हैं, उनको प्रभु ही सूझता। गए बाहर, याद में बैठ गए, भूल गई दुनिया, शाम पड़ गई, उठकर आए। घर वाले पूछे क्यों भाई, तुमने बेदी को बुलाया कि नहीं? नहीं आज याद नहीं रहा, कल ले। इसी तरह कहते कई दिन गुजर गए, बाहर जाना प्रभु की याद में मैल हो जाना, शाम को फिर आना, रोज वही तंस्करा। आखिर एक दिन कहने लगे घर वाले, भाई आज अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारी बड़ी बुरी गति है। कहते भक्ता और संसारियां जोड़ कर दिन आया। गए, अच्छा भाई आज जरूर ले आऊंगे। उस दिन भी वही,
सिंह या भक्त लोग किसी के समझाने से नहीं समझ सकते। याद रखो, दिली लगन जिधर लग गई उसी में मैल है, उसी रंग में रंगे गए, फिर याद में बैठे। शाम पड़ गई, आंख खुली, ओहो आज आज तो बड़ी बड़ी गति होगी घर में। चले दिल में सोच, अच्छा भी जो भगवान करे। भगवान ने देखा मेरा भक्त बड़ी मुश्किल, वो बेटी की शक्ल बनाकर आ गया। पूछा, नामदेव का मकान कहाँ है भाई? तो लोगों ने कहा ये है। अच्छा भैया, वो बना दिया चबूतरा, जो कुछ गिरा था छजा हुआ चलेगा। अब देखिए खुदा के हाथों का बना हुआ चबूतरा छज्जा क्या खूबसूरत होना, और थोड़े वक्त में बनाकर चले गए। जब आए दूर से देखा कि छज्जा बना हुआ, पहचान गए भगवान काम कर गया। जबान है बुलबुला दानंद के मीद आनंद, बुलबुलों की जबान बुलबुल ही जानती, भक्तों की आंख पहचान जाती है कि आज भगवान काम कर गया। तकड़े हुए दिल सजा शेर हो गया। गली मारे वाले पूछने लगे, महाराज ये क्या मजदूरी दिया, क्या मजदूरी लेता तुम्हारा बेटी? बड़ा लायक आया, बड़ा आला छज्जा बनाकर थोड़े वक्त में चला गया। क्या लगे? हाँ बेटी प्रीत मजदूरी मांगा, वो तो प्रेम की मजदूरी मांगता है बड़ी। कहते कब आता है? जब कुल कुटुंब सगल से तोड़े तो हमरे बेटी आवे। जब सब तरह से तुम्हारी लगन टूट जाए, उस एक के साथ लग जाए, फिर वो आ जाता बिन बुलाया आता। नामदेव तो भक्ति में मैं थे ना, उसने तो नहीं कहा था कि मेरा छज्जा बना दो। फिर भगवान को इस बात की बिर्द होता। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाक्य सुनाऊं। हजूर के वक्त मेरा लड़का बीमार था, सब बड़ा डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। जवान था, सारा 20 साल का था। तो तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, इसकी किसी वक्त उम्मीद नहीं शायद खत्म होने का। बहुत अच्छा, एतवार आ गया। हजूर का ये हुक्म था कि भाई एतवार को अमृतसर स्नान सत्संग करने जाना। मैं सुबह 4 बजे उठा, दिल में आया भाई डॉक्टर ने तो ये कहा है। मैंने कहा मैंने कौन सा बचा लेना, गुरु जाने अपना काम, मैं अपने काम जाऊं। चलो मैं चला गया अमृतसर। अमृतसर सत्संग हो गया, गर्मी के दिन थे। 10-1 बजे सत्संग पड़ा भोग, 10:30-11 चला जी में आया। आधे रस्ते तो आए हूँ, चलो दर्शन कर जाऊ। चल पर ब्यास पहुंचा दिन को 1:30 बजे, गर्मी के दिन थे। अगर ऊपर थे उनको पता लगा कि मेरा आया, बुला भेजा। लेते हुए थे, उठकर बैठ गए। पूछे ने लड़के का क्या हाल है? ये लोग जानी जानते होते हैं ना। मैंने कहा हजूर वो बीमार था, ज्यादा ही बीमार था, मगर मैंने समझा हजूर का हुक्म है, इधर जाना, मैंने क्या बचा लेना। फिर बड़े उदास होकर मखमूम होकर बैठ गए। मैंने कहा हजूर जो आपका नाम ले उसको कोई फिक्र चिंता नहीं रहती, आप इस तरह से बैठ गए। कहने भाई तूने जो सिर से बोझ उतारा मुझे उठाना पड़ा। तो सम्राट पुरुषों के ये कायदे हैं, मैं आंसर हूँ। अगर तुम सब कुछ उन पर छोड़ दो, वो सारे काम करता है तुम्हारे बताए और मांगने के करता। सम्राट पुरुष की यही मैं, तो वो तो आता है जब दिल में ख्वाहिश हो, तो फिर क्यों नहीं आएगा? सवाल तो यह, अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश ना भी हो, तुम्हारा दिल उस तरफ थोड़ा हो, मुंह उस तरफ हो, फिर भी वो तुम्हारी संभाल करता है। और अगर तुम्हारा मुंह भी उधर हो, फिर तुम मांगो भी तो क्यों नहीं मिले? गुरबानी कहती है पिता कृपाल आ गया कि नहीं, भारत मुख मांगे सो देना। उस दयाल पुरुष ने ये हुक्म किया, असूल बना, जो बच्चा मुंह से मांगेगा मैं। नानक बारह के ही सुख मांगे मो हृदय बसे चरण। कह रहे थे फिर मांगने क्या चाहिए कि भाई आपका चरणों का मेरे हृदय में निवास। ये कुरान शरीफ कहता है बंदा जो मुझसे मांग दूंगा। सम आत्मा उन्हें यही पूर्ण पुरुषों ने की जबानी बयान कर रहे। तो अगर हमारे अंतर में इस बात की लोचा जबरदस्त हो उसके पाने की, तो वो जरूर मिलेगा। एक बच्चा था, एक कमरे में बैठा था, उसकी माता रसोई में थी, दूध उबाले खा रहा था। बच्चा उठना चाहता था, उठा पांव फिसल गया, मुंह के बल गिरा। फिर दीवार को पकड़कर उठना चाहा, हाथ फिसल गया, फिर मुंह के बल गिरा। फिर कोई और कोई कपड़े को लटका था, उसको पकड़कर उठना चाहा, कपड़ा नीचे आ गया, फिर सिर के बल गिरा। लाचार होकर, आपको पता जब इंसान लाचार होता है तो पुकार करता है, कहते हाय माँ। वो आवाज माता के कानों में पहुंची। माता ने क्या किया, दूध की परवाह नहीं की, वाले खा रहा था खाने, भाग दौड़ी जाकर बच्चे को उठाया, गोद में लिया, सीने से लगाकर वापस आई तो दूध सब उबल कर गिर गया। बच्चा कह रहा है माता मैं तुमको बड़ा प्यारा हूँ। कह रहे हाँ बच्चा तू बड़ा प्यारा है, क्या तूने दूध की परवाह नहीं की और तू चले आए कि हाँ बच्चा तू बहुत प्यारा। बच्चे के दिल में अब ये आ गई, समा गई कि जब भी माता को बुलाएंगे माता आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद वैसे कमरे में खड़ा था, गिरा चिरा कोई नहीं था, वैसे किया गया हाय माँ हाय माँ हाय माँ, आधा घंटा हाय माँ करता रहा, माता न आई। बच्चे ने दिल में सोचा कि आज बहुत अच्छी चीज कोई और बनाई होगी, चढ़ाई होगी चूल्हे पर, इस खातर नहीं आई। रेता रेता पहुंच गया उसके कंधे को पकड़ कर, कहने लगा माता क्या चढ़ाया। क्या बच्चा दाल चढ़ाई है, क्या नहीं कभी नहीं हो सकता, बताओ, बताया तो दाल ही थी। कहने माता क्या सबब है, उस दिन तो मैंने एक बार हाय माँ कहा था, तू भागी भागी दौड़ी आई और आज मैं आधा घंटा हाय माँ करता तू नहीं आई। कहने बच्चा आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। भाई दिल्ली अंतर लोचा हो, हमारे अंतर में दुनिया की लोचा भरी पड़ी, दुनिया की ख्वाहिशात भरी पड़ी, हमारे अंतर जिस्म और जिस्मानियत के जो तलकात और ये चीजें ये सब भरी पड़ी। अब वहां प्रभु कहा, दिल तो मांग रहा है दुनिया को, जबान खुदा को मांग रही है, ऊपर से तो सजदे कर रहे हैं, पूजा और पाठ कर रहे हैं, दिल में बच्चे समा रहे हैं, बुतखाना बना पड़ा, बताओ ऐसी जगह खुदा कैसे आएगा, परमात्मा कैसे आ सकता। गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं, अब गौर करिए अपने हृदय का मुकाबला और उन महापुरुषों के हृदय का मुकाबला। फरमाते हैं मेरे अंतर लोचा मिलन की, मेरे अंतर लोचा मिलन की, कि मेरे हृदय में उस मालिक के मिलने की लोचा जबरदस्त ख्वाहिश बस रही। क्यों पाई गुरु पूरे, किसी पूर्ण महात्मा का कैसे मिलाप हो, प्रभु के पाने का जरिया क्या है। जब पुकार हो तो वो मालिक दया करता है, किसी पूर्ण पुरुष को मिला दे, किसी मिले हुए को मिला दे। वो कहते हैं हाथी की चिंगार उसको पीछे पहुंचती है, समझे, और कीड़े की आहट उसे सबसे पहले पहुंचती है। वो सुनता है हमारे गदगद में, वो कहीं आसमानों पर बैठा नहीं, वो हमारी आत्मा की आत्मा गदगद बाजी है। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते। जब सच्ची पुकार हृदय से निकलेगी तो वो क्या करता, किसी मिले को मिला देता। कृपा करे ता सदगुरु मिले, किसी सदगुरु पूर्ण पुरुष का मिलना बड़ी भारी खुशकिस्मती। ये कब मिलता, जब मालिक मिलाता। जैसे हम उस प्रभु को नहीं जान सकते हैं, इसी तरह हम किसी पूर्ण पुरुष को भी नहीं जान सकते। अंधे को आंख वाले को क्या शिनाख्त कर सकते, आंख वाले की, आंख वाला खुद ही दया करके हाथ पकड़ ले तो पकड़ ले। जिसकी अंतर की आंख अभी नहीं खुले वो मनिंदों के घाट में बैठा है, समझे, वो प्रभु को देख नहीं रहा, उस पोल पर जो हायर पावर पावर काम करती है उसका अभी अनुभव नहीं हुआ, तो उसके लिए तो मामूली इंसान ही है ना। गुरु नानक साहब को माफ करना, हम लोगों ने क्या कहा कुराइया, किन लोगों ने जिनकी आंख नहीं खुली थी। अब उस प्रभु को मिले तब जब कोई पूर्ण महात्मा समर्थ पुरुष मिले। यहाँ लफ्ज पूरे का बता, पूरा गुरु इसका मतलब कोई अधूरे गुरु भी होते हैं। मैं अधूरे गुरु से दुनिया भरी पड़ी, बट्टा उठाओ तो गुरु साधु और संत मिलते हैं। सचमुच पूरा गुरु अनुभवी पुरुष आत्म तत्वदर्शी कहीं कहीं मिलता हूं। जैसा आत्म तत्व बोध जिसको नहीं हुआ वो न मिले, हमको आत्म तत्व का बोध कैसे करा सकते, जिसने देखा है वो ही दिखा सकता। अरे भाई ये एक्टिंग और पोजिंग का काम नहीं, सांग बनने का सवाल नहीं, सवाल तो समर्थता का है, पूर्णता का है। तो कहते हैं कि हे मालिक मुझे पूरा गुरु कब मिलेगा, जिसके जरिए जो तुमको मिला है उनके मिलने ही से आप मिल सकोगे। गुरु साहब ने एक जगह फरमाया, تو خسمے کا حکم پیا بن ستگر چیتیا نہ جا. ڈھور کہتے اس مالک نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب تک کوئی ستگرو ہستی نہ ملے میں نہیں ملتا. فنڈامینٹل جس نے دیکھا جس کی آنکھ کھلی ہے وہی تمہاری آنکھ کھولے گا نا. یہ لیکچر بازی کا سوال نہیں بھائی, نہ کتابوں کی گرنتھوں پوتھیوں لکھنے کا سوال ہے, بالکل نہ. یہ تو انبھو کا سوال ہے. جب تک ہماری انتر کی آنکھ نہیں کھلی ہم دوسروں کی آنکھ کہاں کھول سکتے ہیں؟ سوال تو کسی سمرتھ پرش کی نشانی یہی ہے. کیا اس کے بڑے بڑے ڈبروں سے ہم پہچان سکتے ہیں؟ کیا اس کے بڑے بڑے محلوں سے یا بڑی جائیدادوں سے یا بڑے عالیشان مندروں اور سماجوں سے؟ نہ بھائی, مہاتما کی پرکھ کیول ایک ہی ہے جس میں کسی کو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہ وہ مہاتما تم کو کوئی پرچہ دے, کچھ انبھو دے, تھوڑا تجربہ دے. کب؟ جب تمہارا دل اس طرف متوجہ ہو. اگر تم پرکھ کے لیے ویسے ہی شہر سے وہاں چلے جاؤ گے, وہ پاس بیٹھے رہو گے, کچھ نہیں ملے. ہمارا دل فرمایا کرتے تھے کئی بار, لوگ ان سے سوال کرتے ہیں مہاراج لانے کو یہ نام سارا پتا لگ گیا ہے. تو مثال کیا کہتے تھے کہ بھائی کپاس کے کھیت میں سے اگر کتا گزر جائے تو کپڑے تھوڑے چلا لینے, آپ نے سارا بھی سن لے. جب تک توجہ نہ ملے کام کیسے بن سکتا؟ سوال تو توجہ کا ہے. یک نگاہ جان خداش بس بہت درکار ہے ماں. ان کے ایک جان ابھارنے میرا آلود نظر کہو, جان کے ابھارنے والی نظر کہو, یہی کام ہے. حضور کے پاس ہم دیکھا کرتے تھے کئی بار بڑے بڑے پنڈت آ جایا کرتے تھے, آیا کرتے عامل پوشیوں کے پاس پنڈت لوگ, بیس عالم لوگ بھی بیس بات کو آ جایا کرتے. وہ کیا کرتے تھے؟ اکڑ کر بیٹھنا ہو, علم کے زور میں ہوتے تھے نا. جب دو چار باتیں کی, کچھ اپنی علم کا گمان تھا وہ جتلایا, آخر حضور نے ایک بار فرمایا اچھا بھائی تم انتر جاتے ہو, چلو تم بھی لے چلو اور میں بھی لے چلتا ہوں. یہاں کیا کرے کوئی. ایک دفعہ ایک فلاسفر آئے ان کے پاس, شاید کرتار سنگھ نابینا فلاسفر, وہ آئے تو ان کو آگے بٹھایا گیا. ستسنگ سنا, ستسنگ سننے کے بعد کہنے لگے وہی فلاسفر تھا کہ مہاراج میں وہ ہوں جن کی دھواں دھار تقریروں سے دنیا منہ بھاگ جایا کرتی تھی. کسی سٹیج پر میں جا کر بھی لیکچر دیتا تھا تو وہ پھر دوبارہ سامنے نہیں آتے تھے. آج میں وہی ہوں جو آپ کے چرنوں میں ایک طفل مکتب ہو کر بیٹھا ہوں. دیکھو انبھوی پرش کی تاک بات بڑی سری اور صاف دل میں اثر کر جاتی. عامل پرش کے بچن اور ایک خالی زبانی جمع خرچ کے بچنوں میں کتنا بھاری فرق. ایک دفعہ پنڈت صاحب کبیر صاحب کے پاس آئے, دس ماہ کو آ جایا کرتے, بڑے بڑے عالم آتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں, ہمیشہ سے چلا ہے سلسلہ. تو کہنے لگا دیکھ بھائی پنڈت تیرا اور میرا من کیسے متفق ہو سکتا, تیرا میرا منوا کیسے ہو ہی رہے. میں کہتا ہوں آنکھن دیکھی, تو کہتا ہے کاغذ کی لکھی. ارے بھائی میں تو آنکھوں جو بیان کر رہا ہوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور تو کاغذوں کو چاٹ رہا اور کیا جوٹھی پتلے چاٹ رہا. اب جب تک انتر ایک چیز دیکھی نہ ہو, اس لیے قربانی میں یہی کہا سن سنتن کی ساچی ساکھی, سو بولے جو دیکھے آنکھ. سنتوں کی شہادت کو سنو وہ ہمیشہ سچی ہے. کیوں؟ کیوں وہ کچھ بیان کرتے جو آنکھوں سے دیکھ رہے. نانک کا بادشاہ کس سے جائے گا, ان کی وہ آنکھ بن گئی جس کے وہ ہر ایک جگہ نظر آتا, وہ پھر کس کو برا کہے گا. ایک نور سے سب جگ اپجا, کون بھلے کون مندے ہیں ان کا سب سے پیارا. یہ انبھوی پرشوں کی نشانی, ان کی کسی سے ایرشا دوائش نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں. وہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرتے. کرائسٹ آئے وہاں کے لوگوں نے ان کو سوال کیا کہ مہاراج ہمیں کیا کرنا ہے, کیسا برتاؤ کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو کہا بھائی حضرت موسیٰ نے تم کو کیا کہا؟ تو کہنے لگے حضرت موسیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے ٹوتھ فار ٹوتھ ہے نیل فار نیل، جو تم کو دانتوں سے کاٹتے دانتوں سے اس کو کاٹو، جو تمہیں چھرا جو ہے چھرے سے اس کا کام لو. تو کہنے لگے بیکاز آف یور ہارڈ ہارٹینس ہی گیو یو دس کمانڈمنٹ، تمہارے ہردے پتھر کی طرح تھے اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا. کہنے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمائیے. کہتے میں تو یہ کہوں گا لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اپنے پڑوسی سے ایسا پیار کرو جیسا تم اپنے ساتھ کرتے ہو. کہ جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے ان کے ساتھ یعنی لو دائی انیبیز، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کرو. یہ حضور کا قاعدہ. دیرے میں کئی واقعات ہوتے رہے حضور کے وقت کہ مخالف لوگ آ کر ان کے خلاف پرچار کرنا اور لنگر روٹی میں کھا کر جا روٹی لنگر سے کھا کے کبھی حضور نے نہ دی کی. اچھا بھائی کھانے دو. یہ ثبوت ہے میرے عرض کرنے کا مطلب کہ ایسے مہاپرشوں کے اندر ایرشا دواش نہیں، کوئی برا بھی کرتے اس کو بھی برا مانگتے. وقت آیا وہی بھائی ان کی قدر کرنے لگے اور آج دن تک قدر کرتے سچ آخر سچ ہے. تو ان مہاپرشوں کی نظر کا سوال ہے، ایسا پورن پرش ملے کبھی کام بنے نہیں. تو حضور میں یہ ایک صفت تھی بڑی بھائی. میں اس لیے تھوڑے تھوڑے ٹچز دے رہا ہوں کہ ان کی مہانتا ہمیں پتا ہے کہ پریکٹیکل کیا تھی. تو وہ ایسے مہاپرش تھے کہ جن کے چرنوں میں آ کر سب لوگ راحت پاتے تھے. وہاں سماجوں کا کوئی سوال نہیں تھا، اپنے اور پرائے کا سوال نہیں تھا. تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر اس مالک کے ملنے کی بڑی زبردست اچھا ہے، تیبر اچھا، رولنگ پیشن. گھٹ کے گھٹ میں یہی خیال اٹھ رہا کہ اے مالک وہ وقت کب ہوگا جب مجھے پورے گرو سے ملا پاؤں گا. ادھورے گرو دنیا میں بڑے. میں یہ کوئی آپ کو اپنا ودیا کے ساتھ سکھلاتا، ایک تو یہ تو ایکٹنگ پوزنگ کا تو کنارہ رہنے دو نا، وہ تو دنیا بھری پڑی. لوگ بزنس لائے حضور فرماتے تھے کسی نے کھوتی وائے کسی نے پوتھی وائے، ان کے دل کی تہ کی تہ میں جا کر دیکھو دنیا بس رہی ہے. ان کا دین ایمان دنیا بنا پڑا، ظاہر داری وہ کچھ بھی کیوں نہ بنا رہے. یہاں میرے پاس ایک بار کچھ بھائی آئے، آج دو تین تین سال کا واقعہ ہے، کہنے لگے بھائی آپ روحانیت کا کام کر رہے ہو ہمارے ساتھ مل جاؤ. کہ بہت اچھا بھائی، میں آپ کا پروگرام کیا ہے؟ کہہ رہے یہی کہ ہم ایک موٹر لے لیں گے، شہر شہروں میں پھریں گے اور پرچار کریں گے. بڑی اچھی بات. پھر یا چار پانچ ہزار روپیہ مہینہ کما لیں گے. میں کیا بھائی پھر بانٹ لیں گے آپس میں؟ میں نے کہا بھائی صاحب وہ تو پبلک کا ٹرسٹ ہوگا تمہارے پاس، تمہارا اس سے واسطہ کیا؟ زیادہ سے زیادہ تم سب خرچ لے لو، جو روپیہ آئے گا وہ تو پبلک کا ٹرسٹ ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر میں نے کہا اچھا بھائی ایسی روحانیت تو خود کرو، جب سچ میں روحانیت کی ضرورت ہوگی میں بھی آ جاؤں. دنیا میں شاپنگ جا رہی ہے، سبھی پرانوں پیٹ کے دھندا، کہیں کہیں سچی تیبر اچھے والا جو پربھو کو چاہتا ملتا، ایسے بھی لوگ بہت کم جاؤ. گردوارے دھرم استھان ہر ایک سماج کے بھرے پڑے ہیں، وہاں لوگ جاتے بھی ہیں، کچھ پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، کچھ گرنتھوں پوتھیوں کا سوائے بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، مگر ان کی دل کی تہ میں جا کر کھول کر دیکھو کیا ہے. ہمارے بچے راضی رہیں، ہماری روزی کھل جائے، دنیا کے لیے پربھو کی یاد بھی. ہم پربھو کو کیش پا بنانا چاہتے ہیں، معاف کرنا، ہمارے ہردے میں اس کی خواہش نہیں. تو پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے بھائی، جو چیز تم مانگتے ہو ضرور ملے گی تم کو، کوئی شک نہیں. میں نے ابھی قرآن شریف سے بتلایا، گرو صاحبوں کی بانی سے بتلایا، کامن سینس کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا، جو تم مانگتے ہو وہ ملتا. اگر آج ہمیں نہیں مل رہا اس کا کارن ہم دل دماغ اور زبان صحیح نہیں، ہم سکتے زبان نہیں، ہمیں سنتوش نہیں، اس لیے وہ چیزیں آپ نہیں مل رہی. آپ دروازے میں کھڑے ہو جاؤ، آپ کسی کے طرح آ جاؤ بھائی جلدی انتر آؤ انتر آؤ، آپ دروازے سے نہیں ہٹتے. پھر پریئر کرو، پرارتھنا کرو اینڈ ویٹ، انتظار. وہ بیرا نہیں مارا ہے،
वो तो हमारे आत्मा की जानता है, हमारी जो जहाँ वृत्ति जिस तरफ जा रही ना आगे रुचि है उसको भी जानता, वधि वृद्धि बुझे सब भाव, हर एक भाव को वो जानने वाला, पेश करो बस ठीक है। जो वो करने वाला वो देख रहा है ये क्या मांगता, बाद वक्त वो पिता देखता है बच्चा एक हट करके मांगता भी है, वो जो देखता है कि इसमें इसके पीछे जाकर नुक्स होगा, गलती होगी, दुख होगा, वो नहीं भी देता, जो वो बेहतर है। कई बार हम चीजें मांगते भी हैं और हमारी पूर्ण भी हो जाती हैं, मगर पीछे हम पछताते हाय हमने क्यों ये मांगा था। तो सबसे आला प्रार्थना क्या है, उसको उससे मांगो, या सबसे इससे भी बढ़ कर क्या कि जो आप हमारी बेहतरी के लिए समझते हो वो हमें दे दो, जयराम सब कुछ उस पर छोड़ो, काम बन जाएगा। अब अपने दिल की हालत बयान कर रहे हैं कि हमारे हृदय में उस प्रभु के मिलने की लोचा, जबरदस्त ख्वाहिश, रूलिंग पैशन बस रहेगी। हे मालिक, हे प्रभु, मुझे वो वक्त कब आएगा जब ऐसे पूर्ण पुरुषों से मिलाप होगा, समझे, दिल में यह हवस है। कायदे की बात, जिसके जिसको हम पाना चाहते हैं वो एवड ऊंचा हुए को तिस ऊंचे को जाने सो, जो अति सूक्ष्म और अगम है, हम इस स्थूल आंखों के साथ कैसे देख सकते हैं। जब हम ही उसे लेवल के बराबर ऊंचे हो जाएंगे तब उसको हम देख सकेंगे। हवा है देख लो, इसमें हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या है हवा में कुछ नहीं है तो सही, मर सूक्ष्म है, हमारी आंख स्थूल है, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए इसके मुताबिक पकड़े तब ये नजर आए, या माइक्रोस्कोप खुर्दबीन के आले से हम इसको देखें, जिसका खासा है कि एक चीज को कई सौ गुना बड़ा करके दिखलाता है ताकि हमारी आंख के रेंज में आ जाए हम उसे देखने लग जाए। जिनके अंतर सूक्ष्म भी नजर बन गई वही उसको देख सकते हैं। अब ऐसे पुरुष जिनकी सूक्ष्म भी नजर बन चुकी है, वो महापुरुष मिले हमको, हमारी नजर को भी उतनी सूक्ष्म बनाकर हमको दिखा सके, तब काम बने ना। फिर आगे मैं आपको अर्ज करूं, गुरु के भी कई दर्जे हैं। पहले मैंने कहा एक एक्टिंग पोजिंग वाले हैं, सांग बनने वाले हैं, उसको तो किनारे करो भाई, दुनिया भरी पड़ी। उसके बाद हमको सामाजिक गुरु मिलते हैं अपरा विद्या के, वो आपको समाजों के रस्म रिवाज कानूनों में लगाते हैं, ये भी अच्छा काम। मैंने सोशल, इंसान ने मिलजुल कर रहना है, किसी न किसी समाज में रहे, रह कर ही नहीं तो नहीं बनाएगा, इसलिए जहां वहां रहे उसके मुताबिक अपना जीवन नेक पाक और सदाचारी बना रहे। अगर जो अपराविद्या के गुरु हैं, सामाजिक गुरु, वो भी सही तौर से प्रचार करें तो दुनिया में लोग सुखी हो जाए। पाकिस्तान क्यों बना और कैसे बना, ये अपराविद्या के सामाजिक गुरुओं की तंग दिली का प्रचार था जिसने ये बनाया। हर एक समाज क्या कहती है, हम उस पिता के बच्चे, एक पिता एक इसके हम बारक, एक पिता एक इसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। कुरान शरीफ कहता है उस खुदा के कुंबे के हम मेंबर हैं, सभी सांझी वाल सदायन, कोई नदी से बाहरा जियो, सारे महात्मा यही कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे हैं। तो सबके अंतर जब वही है तो गैरियत कहाँ, ये सब महात्मा कहते हैं। सामाजिक महात्मा भी इसी बात का प्रचार करते, फिर भाई झगड़ा किस बात का, अरे समाज कहते किसी का बुरा चितवन न करो, किसी की चोरी न करो, जीवन नेक पाक और सदाचारी बनाओ, निष्काम सेवा करो, किसी से नफरत न करो, सबसे प्यार करो। अगर सामाजिक गुरु भी सही मानों में प्रचार करें दुनिया में सुख हो जाए। मगर ये भी काफी नहीं, इसके ऊपर एक और दर्जा है जो पराविद्या के महात्म तत्वदर्शी है, उनके मिले के बगैर जन्म मन खत्म नहीं होगा। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। दुनिया में सामाजिक गुरु भी बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि महात्मा मिलते हैं, मगर आत्म तत्वदर्शी कहीं कहीं। राजा जनक को केवल एक पुरुष मिले अष्टावक्र, सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनियों की जो सभा राजा जनक ने बुलाई थी, सब हैरान और सरगर्दान थे इस बात पर, इतनी थोड़ी सी देर में जितने में राजा जनक ज्ञान का अनुभव मांगता वो कैसे दिया जाए।
राजा को ज्ञान देने के लिए केवल अष्टावक्र ही निकले, ओनली वन मैन। अगर उस जमाने में जब हम कहते हैं हिंदुस्तान की रूहानियत बड़ी अरूज पर थी, अगर एक निकला था तो आज के हजारों में थोड़े, जिनने ज्यादा हो खुशी की बात, उसकी एक ही फर्क होगी, उसका प्यार सबसे दिली प्यार, उसके अंतर रूलिंग पैशन प्रभु की है, दुनिया की नहीं। जब ऐसा पुरुष मिले उसी को पूर्ण पुरुष मिले। दासीसा फरमाते सारे समुद्रों के मोती, जितने पहाड़ हैं सबको खोद कर उसके हीरे ज्वाहरात सोना चांदी कीमती चीजें निकाल कर एक जगह ढेर लगा दो, और एक ऐसा पुरुष उस मालिक का प्रेमी है, इधर पानी नहीं रखो, मालिक का प्रेमी है, अरे भाई उसको कहे बता भाई तू ये लेगा कि वो, तो गुरु राम ने सीता फरमाते किस तरह वो देखेगा भी नहीं। जब तक इतनी जबरदस्त ख्वाहिश न हो, एक महात्मा के पास दो शिष्य गए, किस लिए कि उनको उपदेश मिले। महात्मा नहा रहा था, क्या चलो भाई तुम ही नहाने चलो, नहाए दरिया में नहाने लगे, जब बच्चा गोता लगाने लगा वो भी, तो उसकी गर्दन पानी में पकड़ ली ताकि बाहर न निकले, एक दो मिनट रखा, तड़पने लगा, छोड़ दिया, बाहर सांस लिया मुंह खोलकर, कह रहे देख बच्चा अगर तेरे अंतर जिस सांस लेने की ख्वाहिश जबरदस्त थी, अगर ऐसी ख्वाहिश प्रभु के पाने की जबरदस्त है तब तू आ जा। बताओ कितने लोगों को है सवाल पे, प्रभु का मिलना अवश्य जरूरी है, जहां पर ऐसी सच्ची ख्वाहिश पैदा होगी, जहां आग जलेगी बेख्तियार ऑक्सीजन मदद को आएगी। हजरत जुनैद थे, हजरत जुनैद पारस में हुए, एक दफा दरिया दजला के किनारे जा रहे थे घोड़ी पर सवार, घोड़िया अरी करने लगे, छोड़ दिया, चलो भाई सब तरफ खुदा का मुल्क है, चल भाई जिधर चल दिया, घोड़ी सरपट हो गई, एक पहाड़ की कंदर पर जा खड़ी हुई, उतरे देखो क्या खुदा का करिश्मा है, वहां देखो तो एक आदमी बैठा, वो बता रहा बुतेरा ही महात्मा की तलाश से पटकता रहा, ना मिला कोई महात्मा, आखिर के चलो भाई ये किनारे बैठेंगे, अगर जज्बे उल्फत में तो खींचकर आ ही जाएंगे, अगर सचमुच तरफ है तो देने वाला आएगा और जरूर आएगा, वहां किनारे जा ऐसी जगह जा बैठा जहां कोई भी ना पहुंच सके, वो पहुंच गए, खैर बातचीत हुई, तसली हो गई, उपदेश दिया, जब चलने लगे तो कहने लगा फिर अगर तुम्हें जरूरत हो तो फलाने शहर में फलानी जगह मेरा पता है वहां आ जाना, तो किस बेपरवाही से वो कहता है, वो मुझे उसे इत्तेफाक नहीं सिर्फ जज्बे को बयान करना है, हद अदब के अंतर रहना चाहिए। कहने लगे आगे जैसे तुम खींचकर आ गए थे फिर भी जरूरत होगी तो खींचकर आ जाओ, भाई तड़प होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, सच्ची लोचा होनी चाहिए, प्रभु कहीं नहीं वो तो तुम्हारे अंतर बैठा है भाई, और जिनने ये महात्मा है माफ करना, सो काल महात्मा को छोड़ दो, जो सचमुच महात्मा वो इसी काम पर लगे, मालिक कभी उनको इधर भेज देता है, कभी इधर भेज देता है, कभी उधर भेज देता है। अमृतसर का वाक्य है, सुबह को वक्त था, मैं बैठा था वहीं, हजूर वहां गए थे लाला दुनीचंद के यहाँ, एक सिख साहब आ गए, मैंने पूछा भाई साहब कहाँ से आओ, कहते राज हजूर गए थे, कहा कि मैं फलानी जगह आया तुम वहां आ जाओ। मैंने कहा आगे कभी दर्शन कहते हैं, कहने नहीं आगे कभी दर्शन नहीं किया, जब हजूर मिले तो क्या तुम भाई आ गए भाई, कहने हाँ मैं आ गया। तो एक पहाड़ की चोटी पर जो खड़ा है ना वो देखते किस तरफ आग जल रही, कहाँ धुआं उठ रहा, या फिर खुद पहुंचेगा वहां, या उसको अपने तक पहुंचाने का सामान करेगा, डायरेक्शन देगा, ऐसी हस्ती का नाम है गुरु, ऐसी हस्ती का नाम है महात्मा। तो ये सिर्फ हजारों बार हजूर में देखी गई, मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि वो पूर्ण पुरुष थे, हमारी हमने फिर भी जो बयान करना अपनी हदें बुद्धि के अंदर विचार के अंतर ही बयान है, वो बयान में तो नहीं आ सकेगा, थोड़ी थोड़ी सी चीज है सिर्फ इस चीज के बतलाने के लिए। अरे भाई जिनको ऐसे महापुरुष मिले तुम बड़े खुशकिस्मत, यही नहीं ऐसा पुरुष जब उपदेश देता है तो कभी छोड़ कर नहीं जाता। हजूर फरमाते थे सिख छोड़ जाए तो छोड़ जाए, गुरु कभी नहीं छोड़ता। ऐसे जबरदस्त का हाथ पड़ गया, वो कहां छोड़ेगा, उसका दिल है। ऐसे वाक्यात देखे जाते हैं। और संभाल हजूर ये फरमाया करते थे साथ ही पूरे गुरु की निशानी, अरे भाई नाम देना क्या है, एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती। सवाल तो संभाल का है, अगर संभाल नहीं तो ऐसे गुरु और नाम कितने जबरदस्त वचन, यूनिक वचन। वो बड़ी छोटी छोटी मिसालें देकर बड़ी पुरमगन बातें कहा करते थे। अफसोस यही है कि हम लोगों ने उनकी कदर नहीं, समझे, हमने उनको न पहचाना। बड़े थोड़े से जिन्नों को उन्होंने बख्शिश की, थोड़े पूछते नहीं तो ज्यादा सब पेट के पुजारी थे।
ये सो खेल खिलाए बालक, रह न सके बिन खीरे, मैं अंतर भूख ना उतरे अमाली, ये सो भोजन मैनी रे।
कहते हैं कि हे माता, हे माँ, अम्मा, मेरे अंतर वो जो भूख भूख है ना मिलने की, पर वो मिट नहीं सकती। हाय हजारों भोजन दुनिया के दे दो, हजारों सामान दे दो, वो तृप्ति कहाँ हो सकती है जो गुरु से हो सकती है। भाई माता पिता का प्यार भी बड़ा जबरदस्त है, मगर गुरु का प्यार हजारों माताओं और हजारों पिताओं से ज्यादा है, लाखों प्यार। वो हर वक्त यही चाहता है कि बच्चे पांव पर खड़े हो जाए। एक रात का समय था, मुझे हजूर के दर्शन को जाने के, गर्मियों के मौसम थे, हजूर सबसे ऊपर छत पर विराजमान थे। ये उनकी दया थी कि उस वक्त जब खबर मैंने दया कर देते थे, मैं चला गया ऊपर, मथा टेका, अकेले ही थे, मैं बैठा हुआ लेते ही थे। मैंने कहा हजूर जो बच्चे चलना फिरना सीख गए वो तो कुछ हो गए, जो बच्चे अभी हलना जुलना नहीं सीखे उनका क्या बनेगा। हजूर लेते ही उठ बैठे, चार पानी क्या कृपाल सिंह महान, तुम क्या चाहते, मैं नाम देना छोड़ दूं? मैं क्या लोग नहीं कह रहे, फिर कौन सा पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे अपने पांव पर न खड़े। ये कभी ख्याल न करो कि जिसने नाम दिया उसकी दया नहीं है, वो तो चाहता है किस वक्त तुम उसके चरणों में पहुंचो। और अब भी मैं याद करूं, चोला छोड़ने से वो कहीं दूर नहीं गए, जिसको नाम दिया साथ हो बैठता, बात हो बाशदर मकानो लाम काम, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओ जीते जी या मरकर, फिर भी वहां। ऐसे गुरु जब मिल गया फिर तुमको छोड़कर कहां जाएगा भाई, वो जिस्म तो नहीं थे, हम इस बुलेखे में रहे। हजूर ये फरमाया करते थे, बड़ी छोटी छोटी मिसालें, कि आज भाई कुर्सी टूट गई बुलाओ तरखान को, आज चरपाई टूट गई बुलाओ तरखान को, आज दरवाजा टूट गया बुलाओ तरखान को, क्या अच्छा हो कि तरखान को घर ही लाकर रख लो। क्या तुम गुरुसिख बनो, गुरुसिख बनो तब अंतर गुरु को प्रकट कर लो, तुम शिष्य बन गए, काम बन गया, तो गुरुसिख बनो। सवाल तो ये, अंतर गुरु को प्रकट कर लो फिर हर लोग तुम्हारे अंग संग है। सवाल तो ये, अब भी जिन भाइयों को हजूर से उपदेश मिला, वो भाई कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे अंतर बैठे हैं। और हजूर फरमाया थे बच्चा दूर रोता हो, गुरु पर्देदार औरत की तरह है, उसने बाहर नहीं आना, वो दरवाजे में खड़ी है, जो बच्चा दूर रोता खसमा दुखाए, ये लफ्ज बता करते थे, दरवाजे में आ जाए वो खींच कर उसको अंतर कर लेगी। अब भी वो उस दरवाजे पर खड़े हैं, दो भरमत पीछे आओ खींचने को चाह, समझे, हमारे यहाँ बैठ कर सिर्फ उनको ये फरमाया, यहाँ बैठा नहीं गया, मुश्किल बात है, यहाँ आओ, वो हमारी इंतजार में है कि किस वक्त मेरे बच्चे मेरे पास आते, समझे। सवाल तो वो हमको लोच रहे हैं, हम भटक रहे हैं दुनिया में, अरे भाई दुनिया में तुम्हारा रिश्ता ही क्या, माफ करना, अगर कोई सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में है तो हमारे ख्याल हैं जो उनके चरणों में बैठे, जिनको गुरु का प्यार है उनका गुरु भाइयों से भी प्यार होगा, जहां ईर्ष्या और द्वेष है वहां गुरु का प्यार का।
इस बात का 16 ने सही सबूत, जिसका गुरु से प्यार है उसके शिष्यों से भी प्यार। अगर मजनू एक बार देखा गया, पाए सग बोसी मजनू खड़क गुफ्ता चबूत, कुत्ते के पांव चूम रहा था एक दिन मजनू, लोगों ने देखा, पूछा, अरे भाई ये क्या करते हो? क्या लगी सग गाहे गाहे कर कुए लैला रखता हूँ, ये कुत्ता मैंने देखा था कभी कभी मेरी लैला की गली में जाया करता था। अरे भाई लैला की गली जाने वाले कुत्तों के अगर मजनू पांव चूम सकता, अरे भाई हम क्यों नहीं भाई भाई के पांव चूम सकते? क्या हम उसके चरणों में नहीं बैठे थे? आज एक दूसरे से जुड़ा है, ये गुरुभक्ति नहीं। तो अंतर में जब तक सच्ची ख्वाहिश न हो सवाल तो काम कैसे होगा? शिष्य के अंतर पूरी भूख एक चीज की होगी, उसकी और कोई चीज नहीं भाएगी। तो हमारे अंतर अगर उस प्रभु के मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश है, तो अवश्य गुरु पूरे के भी मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश होगी, क्योंकि वही मिला हुआ है, वही हाथ है जो हमको पकड़ने के लिए दुनिया में से निकालने के लिए आता, समझे? अगर हमने उसकी कदर नहीं की, तमीजी बयान करते हुए साजो भाई ने गुरु और परमेश्वर का मुकाबला किया, समझे, प्रभु का मुकाबला किया, और उसने विशेष करके यही बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन सदगुर दियो बताया, कि दोनों गुरु और गोविंद खड़े हैं, और गुरु और गोविंद दो नहीं, वो इसका इजहार की जगह है, वो वही काम कर रहा है, मतमीजी बयान के तौर पर है कि जो हाथ बढ़कर जिसने हमको पकड़ कर इन्हों के घास से ऊपर लाया, उसका सरे तस्लीम, उसी के अंतर वही खींचने वाला था। दस्ते तो दस्ते खुदा, चश्मे तो मस्ते खुदा, उसका हाथ प्रभु का हाथ होता, उसकी आंखें प्रभु से मस्त होती, ऐसे पुरुष का मिलना जहर किस्म। इस वक्त
दीनो दुनिया दर का मंदे आ परी रुख सारे मार, हर दो आलम कीमते यक्कार मुए यारे मार।
भाई नंदलाल साहब बड़े गुरु भक्त हुए, मुर्शिद प्रस्त, शिष्य के अंतर जब वो गुरु की शान को बाहरमुखी और अंतर्मुखी दोनों हालतों में देखता है, तो उसको जो अंतर से रंग या नशा आता है, या मिकनाती सी ताकत जो अंतर से उसको खींचती है, उस जज्बे के जेरे असर होकर वो कुछ क्या उठता, वो उसको क्या देखता है, किसी और रंग में देखता है जिसमें आम दुनिया उसको नहीं देख रहे। ऐसे महात्मा दुनिया में आते रहे, दुनिया ने उसको अपने लेवल से देखा, समझे, जिनकी आंख खुली, जिनको अंतर्मुख अपने आपे की सूजत हुई और प्रभु के पाने की जबरदस्त ख्वाहिश बढ़ने पर उसमें जो उसकी अंतर बेहाली, तजमजम कहो, तड़प कहो, सोजो गुदाज कहो, वो बड़ी बढ़ते हुए जब उसको उस रस्ते में कोई तस्कीन का कारण बने कोई चीज, तो उसकी तारीफ में बेख्तियार इंसान से लफ्ज ऐसे निकलेंगे जो आम दुनिया से दिलों से नहीं निकल सकते। भाई नंदलाल साहब दसम गुरु साहब के वक्त हुए थे, बड़े आलिम फाजिल थे ये। दसम गुरु साहब से जब उनको अंतर की राहत मिली, अंतर की आंख खुली, उस मालिक को चलते फिरते किसी पोल पर काम करते देखा, तो उनकी तारीफ में ये फरमा रहे हैं, कहते हैं कि भाई वो जो परी रुखसार, क्या मेरा मुर्शिद परी रुखसार क्यों है, कि उसके अंदर एक हुस्न है रूहानियत का, जहाँ हुस्न होगा वहीं कशिश होगी, जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शैला नहीं होता। جہاں کوئی کشش ہوگی, کوئی روحانیت کا جذبہ کیا کہنا چاہیے اس کا اظہار ہو رہا ہوگا, وہ کشش پائے گی. تو وہ اس میں قدرتی بات ہے, لگن پیدا ہو. جب ایک خوبصورت چیز کشش والی چیز کو دیکھو, دل کو کشش کھچ پیدا ہوگی کہ نہیں. تو فرماتے ہیں جہاں کوئی خوبصورتی نہ ہو وہاں لگن اور عشق اور پریم بھی پیدا نہیں ہوتا. مثال دے کر سمجھاتے ہیں, جب دیوار پر اگر پھول گل بوٹے بنے ہو تو اس پر کوئی بلبلا کر کیا چاہتی نہیں. سچ مچ پھول کہیں کھل رہے ہو تو وہاں بلبلے کیا چاہتی ہیں. ایسے ہی کہتے جہاں روحانیت کوئی اظہار کسی پول پر ہو رہا ہے, اس کی کشش جب ہوتی ہے تو بے اختیار انسان اس کے دل میں لگن لگ جاتے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا مرشد ہے یہ کیسا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہی اس کی کمند میں بندے پڑے, وہ دونوں میں مائل ہے, دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی. دنیا کے لحاظ سے وہ سداچاری برہمچاری نیک بات اہنسا کے دھارن کیے ہوئے ہیں, ستیہ کو دھارن کیے ہوئے ہیں. اس کے اندر سب کے لیے پریم ہے, سب کے لیے دیا کا بھاو ہے, سب کے لیے پیار اس کے دل میں بس رہا ہے, اور نشکام سیوا اس کا جیون بنا پڑا. یہ دنیا کے لحاظ سے, روحانیت کے لحاظ سے وہ پول ہے جس پر روحانیت کا سورج چڑھ کر لوگوں کو روشنی دے رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا ہی میرے اور مرشد کی کمند میں بنے پڑے. وہ مجسم پورنتا ہر پہلو سے مجھے نظر آ رہا. پھر کیا کہتا ہے, میرا کیا جی کرتا ہے جب ایسی پورن ہستی سامنے دیکھنے میں نظر آئے. تو قدرتی بات ہے کہ انسان کے دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے سب کچھ میں اس پر قربان کر دوں. تو فرماتے ہیں ہر دو عالم قیمتیں یکتار ہوئے یار ماں, کہ وہ جو میرا یار ہے نا پریتم, میرا یہ جی کرتا ہے کہ اس کے جو بال ہے نا ایک ایک بال پر دونوں عالم قربان کرتا چلے. دونوں عالم, یہ دنیا بھی اور اگلی دنیا بھی, لوک اور پرلوک, اس کے ایک ایک بال پر قربان کر, کہ میرا مرشد اتنا خوبصورت ہے, اتنی اس میں زبردست کشش ہے کہ میرا جی کرتا ہے سب کچھ اس پر قربان کر دوں. جی حاضر.
نو دنیا در کمندے آ پری رخ سارے ماں, ہر دو عالم شیمت یکتار موے یار ماں, مان میں آرے متابے غمزے میگان او یک نگاہ زاف زائش بس بود درکار ماں.
کہتے مجھے اس پول پر روحانیت کا اظہار اتنے زبردست سے اس سے روے نکل رہی ہیں, ریز نکل رہی ہیں, کہ میں اس کی جو آنکھ کی پلکی ہے یہ جب آنکھ اوپر نیچی کرتا ہے تو اس کی تاب میں نہیں لا سکتا, اتنی زبردست رہو. کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے اگر وہ ایک آنکھ بھر کر میری طرف دیکھ لے تو یہی کافی, میری دین اور دنیا خدا سب اسی میں آ گیا. کارن کیا, انسان کے اندر پرماتما موجود ہے, گٹ گٹ میں موجود, ہماری آتما کی وہ آتما, ہمارا جیون آدھار. تو جیون آدھار ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے اس کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے. سب میں مر کہیں پرگٹ ہے کہیں گپت ہے, سبوں گھٹ میرے سائیاں سنی سے نکوئے, بلے ہاری تس گھٹ کے جان کھٹ پرگٹ ہو. مجھے گھٹ میں وہ پرگٹ ہو چکا ہے کہ تو وہ بلہار جانے کے قابل ہے. کہتے ہیں کہ ایک ایک بال پر دونوں حلق میں قربان کرتا ہوں, بلی کا بلب ہے, خالی بلب تو شیشے کا لگانا کوئی اس نظر نہیں جاتی, جب اس میں بجلی اظہار کرتی ہے نا روے نکلتی ہے وہ کشش کرتی ہے. اس وقت دیکھتے ہوئے آپ کا خیال شیشے کی طرف نہیں جاتا بلکہ جو بجلی اس میں چمک رہی ہے وہ کشش پاتی ہے, آپ بھول جاتے شیشہ ابھی کہ نہیں. ایسی یہ حالت ہے کہ جن ہردوں میں وہ مالک پرگٹ ہو چکا ہے, اس کا نام ہے سادھو, اس کا نام ہے سنت, اس کا نام ہے گرو کہہ دو, مہاتما کہہ دو, پورن پرش کہہ دو, تتو آتم تتو درشی کہہ دو. تو کہتے ہیں کہ اس کے وہ اتنا اس کے اندر کشش ہے تو میں اس کشش میں آ کر میں سب کچھ قربان, یہ دنیا دونوں دنیا قربان کر دینے کو تیار ہوں. کہ جب وہ دیکھتا ہے میری طرف آنکھیں کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے تو اس کی تاب میں نہیں لا سکتا, کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ ایک میر بھری آلو میرا آلود میر بھری دیا بھری پریم بھری نظر میری طرف ڈال دے, بس اتنی کافی.